हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान ने फोन कार की सीट पर फेंकते हुए एक झटके से गाड़ी को रीस्टार्ट किया। वो कार को फुल स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो जल्दी से उड़कर अपनी मैडम जी के पास जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। शाम के करीब 8 बजे थे जब अनाही अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। इस दिन बारिश होना बहुत ही असामान्य था, फिर भी अनाही उस बारिश के शोर शराबे में अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। काशी और राधे श्याम दोनों अनाही को समझाकर थक चुके थे, इसलिए अब वे भी उसे अकेला छोड़ चुके थे। अनाही का ध्यान अचानक ही एक गाड़ी के जोरदार ब्रेक के साथ अपने घर के दरवाजे के सामने गया। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने रूहान की गाड़ी खड़ी थी, जिसे वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। वो जल्दी से सोफे से उठी और रेलिंग के पास आकर दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ते हुए बोली, तो आज की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? रेलिंग के पास बारिश की बूंदें ज्यादा आ रही थीं, जिससे अनाही को ठंड लग रही थी, इसलिए वो जल्द ही 2 कदम पीछे हट गई और फिर से आंखें छोटी करके रूहान को देखने लगी। वो अब भी उम्मीद कर रही थी कि शायद रूहान जैसी गाड़ी किसी और के पास होगी और वो उसके पापा से मिलने आया होगा, लेकिन इतनी रात गए किसी का ऐसे आना थोड़ा अजीब था। लेकिन उसकी आंखों में हैरानी और ज्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि गाड़ी से और कोई नहीं बल्कि रूहान बाहर निकला था। गाड़ी से निकलने के 2 मिनट बाद ही रूहान पूरी तरह भीग चुका था। अनाही को बारिश की वो बूंदें याद आ रही थीं, जो कुछ देर पहले रेलिंग के पास जाने से उस पर गिर गई थीं। बारिश का पानी वाकई बहुत ठंडा था, इसलिए अब उसे रूहान के लिए थोड़ा डर लग रहा था कि अगर वो ऐसे ही भीगता रहा तो बीमार हो जाएगा। उसने घबराहट के मारे अपने होंठों को काटते हुए धीरे से कहा, अब मैं क्या करूं? पापा को पता चला तो और नाराज हो जाएंगे। क्या जरूरत थी रूहान जी को यहाँ आने की? खुद में बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में गई और फिर जल्दी से एक छाता लेकर बाहर हॉल में आई। काशी और राधे श्याम भी बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने जब देखा कि अनाही छाता लेकर जा रही है तो राधे श्याम ने जल्दी से कहा, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को? अनाही ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर भगवान का नाम लेते हुए पीछे मुड़कर राधे श्याम को देखा। उसने फिर धीरे से कहा, बात रूहान की है, बारिश में भीग रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर राधे श्याम की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो आगे बढ़े और एक झटके से अनाही का हाथ पकड़ते हुए बोले, खबरदार जो तुम यहाँ से बाहर निकली, क्या उन्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा था? अब तुम दोनों की मुलाकात सिर्फ कोर्ट में होगी। इतना बोलकर वो अनाही को जबरदस्ती वापस उसके कमरे में ले गए। वहीं काशी डर के मारे कांप रही थी। न वो अपने पति का साथ दे पा रही थी, न अपनी बेटी का, लेकिन उसे कहीं न कहीं विश्वास था कि उसकी बेटी बिल्कुल सही है, उसका दामाद बुरा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो राधे श्याम के डर को भी समझ रही थी। राधे श्याम के साथ उसके अतीत में इतना बुरा हुआ था कि अब उसे किसी भी रिश्ते में धोखेबाजी से सख्त नफरत हो गई है और वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये धोखेबाजी नहीं। राधे श्याम ने अनाही को कमरे में बंद करते हुए तेज कदमों से आकर काशी से कहा, खबरदार जो तुम उसे खोलने गई, उसे रहने दो उसके कमरे में बंद, और मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता उसके साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ था। काशी ने धीरे से राधे श्याम के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आपको किसी गलत इंसान ने धोखा दिया है, आप उसका बदला किसी सही इंसान से नहीं ले सकते हैं। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इंसान अक्सर गलत लोगों से धोखा खाकर सही लोगों से उसका बदला लेता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। काशी की बातों में बहुत गहराई थी, जिसे कुछ हद तक राधे श्याम समझ पा रहा था, लेकिन अभी वो अपनी इज्जत से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने काशी का हाथ हटाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका कमरा मत खोलना। इतना बोलकर उन्होंने एक नज़र दरवाजे की तरफ डाली और फिर तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। वहीं रूहान ने हिम्मत करके घर की डोरबेल बजाई, लेकिन अफसोस उसका कोई जवाब नहीं आया। रूहान ने अपना फोन निकालकर अनाही को कॉल किया। माही, जो दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी, उसने जैसे ही देखा कि उसका फोन बज रहा है, वो जल्दी से फोन के पास गई और फिर फोन उठाते हुए बोली, हाँ रूहान जी, आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। आप क्यों भीग रहे हैं बारिश में? और आपको कहाँ किसने था यहाँ आने के लिए? मैंने मना किया था ना आपको, मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? रूहान ने धीरे से कहा, तो आपको पता है कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। अनाही ने आंखें मीचते हुए एक गहरी सांस ली और फिर मुड़कर वापस बालकनी में गई। उसने वहाँ से रूहान को देखते हुए कहा, मैं आपको बालकनी से देख सकती हूँ, लेकिन पापा ने कमरा बाहर से बंद कर दिया है। मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपका ऐसे आना। आपको मुझ पर यकीन रखना चाहिए कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना बड़ा रिस्क उठाने की क्या ज़रूरत थी? और आप इतनी दूर ड्राइव करके आए हैं? अनाही की बातों में गुस्सा भी था और कंसर्न भी। रूहान ने एक हाथ से अपनी आंखों में आए पानी को पोंछा और फिर बारिश की बूंदों में से ही अनाही के कमरे की बालकनी की तरफ देखा। बारिश ज्यादा तेज थी, इसलिए वो अनाही को साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि अनाही वहीं खड़ी है। उसने धीरे से कहा, लगता है मेरे फोन में भी पानी चला गया है। स्पीकर की आवाज़ बहुत अजीब सी आ रही है। आप मेरी बात करवाइए ना, मैं उन्हें मना लूंगा। हमसे बहुत बार सॉरी बोलूंगा, फिर वे मान जाएंगे, लेकिन मैं आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। आपने खाना भी नहीं खाया है ना, देखो चांद भी निकल आया है। उसकी ये बात सुनकर अनाही को रोना आ रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर जैसे पिघल रहा था, जैसे कोई मुट्ठी में लेकर उसके दिल को मसल रहा हो। उसने मुश्किल से अपने गले में होते दर्द को सहन करते हुए कहा, आप क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर आपकी सॉरी बोलने से वे मानते तो कब के मान चुके होते। रूहान जल्दी से बेसब्र होते हुए कहा, तो आप बताओ ना, आपके पापा कैसे मानते हैं? मैं वो सब करूंगा जिससे वे मान जाएं। अनाही ने रोते हुए कहा, अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपको जरूर बता देती। अभी के लिए आप बीमार हो जाएंगे। उसने इतना ही कहा था कि रूहान को छींक आ गई और अनाही ने जल्दी से घबराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा ना आपको सर्दी लग जाएगी, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए ना वापस। रूहान की तरफ से सिर्फ खामोशी आ रही थी। वो अनाही को देख रहा था और अनाही उसे। रूहान फिर धीमे कदमों से चलकर उस बालकनी के नीचे गया जहाँ से अब वो अनाही को थोड़ी अरीब से देख पा रहा था, लेकिन अब उसे दिख गया था कि अनाही पर भी बारिश पड़ रही है। इसलिए उसने गुस्से में कहा, मुझे तो इतने लेक्चर दे रही हो, आप खुद क्यों बारिश में भीग रही हो? अनाही ने भी गुस्से में कहा, मैं आपसे तो कम भीग रही हूँ, आप हर वक्त जिद पर क्यों उतर आते हैं? रूहान ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, जहर कम मात्रा में लो या ज्यादा, मात्रा मौत होना तय होता है। अब आप थोड़ी बारिश में भीगो या ज्यादा, उसका असर एक जैसा ही होता है। आप अभी बीमार हो जाएंगी। आप अंदर जाओ, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ। मैं बार बार डोरबेल बजाऊंगा और आप देखना, एक न एक बार तो वो सुनेंगे और फिर दरवाजा खोल देंगे। अनाही ने गुस्से में आंखें बंद करते हुए कहा, ये सिर्फ बोलने में आसान है, करने में नहीं। मुझे पता है ना मेरे पापा कितने जिद्दी हैं। अगर उन्होंने एक बार ये ठान लिया है कि वो आपको अंदर नहीं आने देंगे, तो वे दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। रूहान ने एक हाथ से अपना सर खुजाते हुए कहा, एक तो आपकी आवाज़ रोबोट जैसी मुझे सुनाई दे रही है, और अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आपके पास आना है, आपको खाना खिलाना है। आपको पता है मैं बाहर से आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, जो जो मुझे पता था आपको पसंद है वो सब लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने वो गाड़ी में रखा है क्योंकि बारिश में भीग कर वो ख़राब हो जाएगा।